سوموار کو مسائل شروع کرنے تھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعی فجعله غثاء احوا الى الاخر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ ہم نے کیا پہلے، پھر اس کے بعد خلاصہ تفسیر بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پچھلے ہفتے کر لی تھی. ہمارے کا مسائل پیج نمبر 722 معرف القرآن والیوم 8 سے ہم شروع کرتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مسئلہ لکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، مسئلہ، یہ لفظ مسئلہ جو ہے وہ ہماری کامن اردو ٹرمینالوجی کے اندر اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم پیش آیا. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پرابلم پیش آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ لفظ ہے، لیکن یہ لفظ ان لفظوں میں سے ہے جو کہ اردو زبان کے اندر عربی سے آئے، کیونکہ اردو زبان میں صرف عربی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ فارسی کے بھی الفاظ ہیں اور ترکی زبان کے ترک زبان کے الفاظ بھی ہیں، سنسکرت کے الفاظ بھی ہیں جس کو ہندی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی جس کو آج ہندی کہتے ہیں عمومی طور پر. تو خیر، لفظ مسئلہ عربی سے آیا. تو اب اس لفظ کے اوپر غور کرنے سے بھی ہمارے اوپر کچھ نقطے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کھلتے ہیں کہ یہ لفظ مسئلہ عربی زبان کے اندر کہاں سے نکلا، کیا ہے اس کے روٹ ورڈز، اگر کوئی گرامر والے ساتھی بتانا چاہیں مسئلہ کا جو لفظ ہے اس کا بیس کیا ہے، روٹ ورڈز کیا ہیں اس کے، اس کا مصدر کیا بنتا ہے، کوئی بتائے گا اس کی بیسس کیا ہے لفظ مسئلہ؟ اصلاح نہیں. اب سوال کرنے والوں کو دیکھ کر کے جواب نہیں دینا چاہیے، جو سوال کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر کے جواب دینا چاہیے. بھئی ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہر چیز کا جواب اصلاح، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. جی، سلا نہیں، سا الا. ٹھیک ہے، سین حمزہ لام، سا الا. ٹھیک ہے، سا الا کا مطلب اس نے سوال کیا. ٹھیک ہے، سا الا یس الو سوالن فہو سائلن. ٹھیک ہے، یہ اس کی چھوٹی سی سرف صغیر بنائی، سا الا اس نے سوال کیا، یس الو وہ سوال کرتا ہے، سوالن سوال کرنا، فہو سائلن. سائلن کس کو کہتے ہیں، جو مانگنے والا فقیر آتا ہے اس کو سائل کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ سوال کرنے والے کو سائل کہتے ہیں. اور مانگنے والا فقیر بھی چونکہ سوال کر رہا ہوتا ہے کوئی کہ بھائی میرا مسئلہ ہے، مجھے کچھ پیسے ویسے چاہیے، تو اس کو سائل کہتے ہیں. تو سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو. تو کیا پتہ لگا کہ اردو زبان کے اندر اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے، پرابلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مسئلہ. تو مسئلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مسئلہ اس معاملے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سوال، کوشچن کرنے کی، سوال کرنا، جس کو کہتے ہیں پوچھنا. ٹھیک ہے، تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے، جب کوئی پرابلم پیش آئے تو تم سوال کرو. کس سے سوال کرو؟ ٹھیک ہے، دو لوگ ہوتے ہیں جن سے سوال کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے اللہ سے سوال کرو، اپنے رب سے سوال کرو، اس سے پوچھو کہ اللہ اس مسئلے کو دور کر دے یا اس مسئلے کا مجھے حل بتا دے. اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اسباب تمہیں عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے کہ سوال کیا جا سکتا ہے، جن سے کہ کوشچن کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، وہ اسباب کون ہیں؟ وہ اس مسئلے کا علم رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جن کو کہ اس پرابلم سے ریلیٹڈ انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، وہ عمومی طور پر علماء کرام ہوتے ہیں. یا اگر آپ کو مسئلہ گاڑی کے بارے میں پیش آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ آپ کی گاڑی میں پیش آ گیا، تو پھر آپ کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے کہ مولانا صاحب مجھے بتائیں گاڑی کا مسئلہ کیسے حل کریں. राइट, फिर उसके लिए किधर जाएंगे, मैकेनिक के पास जाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी का आलम है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अपने हाथ के बारे में कोई मसला पेश आ गया कि हाथ में एक फोड़ा निकल आया, तो उसके लिए आप मुफ्ती साहब के पास ही जाएंगे, मुफ्ती साहब मुझे बताएं इस फोड़े का मैं कैसे इलाज करूँ। उसके लिए आप तिब्बी अमराज के जो एक्सपर्ट हैं उनके पास जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो इंसान के दीन के मसले होते हैं उनके लिए आप उलमा के पास जाते हैं, और जो इंसान के आम मामलात होते हैं उनके अंदर जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनके अंदर जी जो अल्लाह ताला हमें क्या गाइडेंस देते हैं, हमें क्या किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, कैसे जो है वो इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए हमें उलमा के पास जाना चाहिए। और हमें जो और इसके अंदर दो किस्म के उलमा होते हैं, एक ज़ाहरी उलमा होते हैं जिनको के आम तौर पर आलिम कहा जाता है, और दूसरे होते हैं जो कि हमारे नफ्स से मुतालिक नॉलेज रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनको अंदरूनी कैफियात के बारे में नॉलेज अता फरमाई है, जिनको मशायख कहते हैं। तो उलमा और मशायख के पास जाना चाहिए सवाल करने के लिए, लेके मसले को बैठ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज द होल पॉइंट, जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि लेके मसले को बैठ नहीं जाना चाहिए, और जो है वो किताबों के वर्क खाली यानी पलट पलट करके ना मसले का हल खुद से निकालने की कोशिश, ये भी कोई इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। बल्कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। जब 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 गाड़ी खराब होती है तो हम जो है वो गाड़ी का मैनुअल खोल करके पलटना नहीं शुरू हो जाते, अगर करते भी हैं तो उमूमन उससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि शायद हम उल्टा गाड़ी के अंदर एक नया मसला क्रिएट करते थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जब मैकेनिक्स दिए होते हैं ना तो मैकेनिक्स के पास जाते हैं। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर मैकेनिक्स है नहीं, ठीक है, कोई एक्सेस नहीं है मैकेनिक्स का, तो फिर गाड़ी का मैनुअल देखने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता, तो फिर हम मैनुअल को देखते हैं, ठीक है ना, फिर हम मैनुअल को देखते हैं। वही वही मामला जो है वो दीन का भी है और अपने मामलात का भी है कि जब आपके पास उलमा अवेलेबल ना हो, बिल्कुल अवेलेबल ना हो, यानी एक्सेसिबल ही ना हो, तो फिर आप जो है वो मैनुअल देख लें, ठीक है। लेकिन उलमा अवेलेबल भी हैं, दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, दे आर जस्ट अ विजिट अवे, दे आर जस्ट अ व्हाट्सएप मैसेज अवे, और फिर भी हम कहेंगे नहीं जी हम उनके पास क्यों जाए, ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने उर्दू जुबान पढ़ना सिखाया है और अंग्रेजी जुबान पढ़ना सिखाया है और हमें इंटरनेट एक्सेस भी दिया है, तो हम शेख गूगल साहब पे जाकर के सर्च कर लेते हैं, मसले का हल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उलमा से सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो ये लफ्ज मसला के अंदर एक अहम नुक्ता है हमारे लिए। उलमा ने फरमाया है कि कारी जब सब हिस्मा रब्बिकल आला की तिलावत करे, तो अब ये उन्होंने जो मसला बयान किया ना, तो मसला बयान करने से यहाँ पर मतलब ये है कि शरीयत का एक यानी मसला शरीयत की कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहते हैं उन चीजों को कि जिनके बारे में हमें कुछ गाइडेंस मिलती है कुरान और हदीस से, ठीक है। तो इस यानी इसके बारे में फरमाते हैं कि कारी जब सब्बह इस्मा रब्बिकल आला की तिलावत करे तो मुस्तहब है कि ये कहे सुबहान रब्बियल आला। सहाबा कराम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्न उमर, इब्न जुबैर, अबू मूसा और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन का यही मामूल था कि जब ये सूरत शुरू करते थे तो सुबहान रब्बियल आला कहा करते थे, यानी नमाज के सिवा जब तिलावत करें तो ऐसा कहना मुस्तहब है, ठीक है। तो ये एक शरीयत का पॉइंट हो गया, ये एक फिका का पॉइंट हो गया कि ये कहना जो है वो मुस्तहब है, और मुस्तहब किस चीज़ को कहते हैं, मुस्तहब उन अमलों को कहते हैं कि जिनके करने से सवाब मिलता है लेकिन ना करने से गुनाह नहीं होता, ठीक है। अगर ये हुक्म होता, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म होता, तो ये डिपेंडिंग ऑन कि ये हुक्म हम तक किस तरह से पहुँचा है, क्या किसी कुरान के आयत के जरिए से पहुंचा है या किसी हदीस मुतवातिर के जरिए से पहुंचा है, ठीक है, तो फिर वो उस यानी फिर उसके ऊपर अमल करना फर्ज होता, ठीक है। लेकिन अगर किसी किसी हदीस सही के जरिए से पहुंचा है जो कि खाली एक ही दफ़ा नरेट हुई है किसी जगह पर, जिसको के यानी खबर वाहिद कहते हैं, तो फिर ये चीज़ जो है वो वाजिब कहलाती, ठीक है। फर्ज कब कहलाती, जब कुरान या हदीस मुतवातिर या हदीस मशहूर, ठीक है, तो फिर वो फर्ज के दर्जे में आ जाती है। और अगर जो है वो सिर्फ किसी हदीस सही के रेफरेंस से पहुंचती है हमारे पास कोई हुक्म, तो वो वाजिब के दर्जे में आता है, ठीक है। और अगर किसी का अमल मनकूल है, जैसे कि सहाबा कराम का अमल मनकूल है, तो सहाबा कराम के अमल की वजह से फिर उसको हम फर्ज और वाजिब तो करार नहीं दे सकते, तो इस वजह से उलमाए कराम यानी फुकहाए उज़ाम ने उसको मुस्तहब के दर्जे में रखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर मसाइल कहलाती हैं, ठीक है, जो कि हम उमूमन जो है फ़िका के किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन उलमाए कराम तफसीर में भी कभी कभी कुछ मसाइल मेंशन कर देते हैं। दूसरा मसला, अच्छा, यानी वैसे एक्सप्लेनेशंस की है कि नमाज के अंदर ऐसा ना करें कि सुभान रब्बी अलाला कहना शुरू हो जाए, बल्कि जब तिलावत कर रहे हो तो उस वक्त ये कहना चाहिए सुभान रब्बी अलाला, क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं ना, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, के तस्बीह बयान कर अपने रब, अपने आला रब के नाम की। तो इमीडिएटली उस हुक्म के ऊपर अमल करके यानी सवाब सवाब पा लिया, अल्लाह ताला का हुक्म था उसके ऊपर फौरन से अमल कर लिया। तो यही एटीट्यूड जो है सहाबा का होता था कि जब उनके पास हुक्म पहुंचता था तो वो उसके ऊपर अमल करने की कोशिश किया करते थे। मसला दूसरा कि हजरत उकबा बिन आमिर जोहनी रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि जब सूरह सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इजअलूहा फी सुजूदिकुम, यानी ये कलमा सुभान रब्बिल आला अपने सजदे में कहा करो। तो सजदे में कहा करो का मतलब क्या कि सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला तस्बीह के मानी पाक रखने। अच्छा, तो सजदे के अंदर सुभान रब्बिल आला कहना जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने एक हुक्म के जरिए से फरमा दिया। तो अब नमाज के अंदर जो हम सुभान रब्बिल आला कहते हैं तो फिर ये जो है वो सुन्नत के दर्जे के अंदर आ जाता है कि सजदा इसके बगैर भी हो जाता है, लेकिन ये कहना जो है वो सुन्नत का मुकाम पा गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से एक अमर का सीगा इस्तेमाल किया और हमें हुक्म दे दिया। ठीक है, लेकिन ये हुक्म जो है वो फर्ज के दर्जे तक नहीं पहुंचा। ठीक है, क्योंकि अमर का जो सीगा होता है ना, उस अमर के सीगे से हुक्म तो हो जाता है, लेकिन अरबी जुबान के अंदर जो अमर के सीगे के से जो यानी जो उसके मफहूम निकलते हैं वो कम से कम 18 या 19 होते हैं। ठीक है, 18 या 19 डिफरेंट मफहूम होते हैं जो के सीगे अमर से निकलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हर अमर को जो है ना वो फर्ज के दर्जे में नहीं रखा जा सकता, हर अमर को वाजिब के दर्जे में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो ये तो जब उसूल फिका पढ़ते हैं तब ये बातें खुल के सामने आती हैं कि जी कैसे ये 18 और 19 मुख्तलिफ तरीके हो गए अमर के सीगे के, या मुख्तलिफ मफहूम हो गए अमर के सीगे के। ठीक है, इसी वजह से ये सारी तफसीलात जो होती हैं ना, ये उलमाए कराम की हमें ज़रूरत पड़ती है इन तफसीलात को समझने के लिए, और ये यानी ये उनकी असिस्टेंस के बगैर ये तफसीलात हमें समझ में नहीं आ सकती। क्यों नहीं समझ में आ सकती? इसलिए नहीं कि उनके ऊपर कोई इल्हाम होते रहते हैं, बैठे रहते हैं, मुराकबे करते रहते हैं आलिम लोग। ठीक है, और उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होते रहते हैं कि जी अमर के सीगे के इतने मानी होते हैं, ये ऐसे होते हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए नहीं उलमा के पास ये जवाब होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं, वेरी सिंपली पुट, उनके पास ये जवाब इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने वक्त लगाया होता है। ठीक है, तफसील में जा करके इन उलूम को पढ़ने में और सीखने में अपने टीचर से उन्होंने वक्त लगाया होता है, डेडिकेटेडली उन्होंने इल्म हासिल किया होता है, और डेडिकेटेड इल्म हासिल करने की वजह से जाहिर है कि ये सारे मसले जो है उनको समझ में आ जाएंगे। और हम जो हैं वो डेडिकेटेडली जितनी इबादतें करते रहें, इबादतें करने की वजह से हमें ये मसले समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कि इनके लिए इल्म हासिल करना होता है, इबादतें नहीं करनी होती हैं ये मसले समझने के लिए। ठीक है, तो इबादत करने वाला कोई नेक इंसान जो है वो ये ना समझना शुरू हो जाए कभी भी कि मुझे तो अब उलमा की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं तो इबादतें इतनी ज्यादा करता हूँ तो मैं तो दीन के अंदर बहुत आगे बढ़ गया हूँ, अब मुझे इन मौलवियों से पूछने की क्या जरूरत है। भाई, मौलवियों का अलग रोल है, आपका एक अलग काम है इबादत करने का। ठीक है, तो आप बेशक कितनी इबादतें करें लेकिन मसलों के लिए तो आपको मौलवी के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, इसके आगे सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला तस्बीह के मानी पाक रखने और पाकी बयान करने के हैं। सब्बिहिस्मा रब्बिका के मानी ये हैं कि अपने रब के नाम को पाक रखिए, मुराद ये है कि रब के नाम की ताजीम और तकरीम कीजिए, और जब अल्लाह का नाम लें तो खुशू खुजू और अदब का लिहाज रखिए, और हर ऐसी चीज से उसके नाम को पाक रखिए जो उसके शायान नहीं। इसमें यह भी दाखिल है कि अल्लाह ताला को सिर्फ उन नामों से पुकारिए जो खुद अल्लाह ताला ने अपने लिए बयान फरमाए हैं, या अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाए हैं, उनके सिवा किसी और नाम से उसको पुकारना जायज नहीं है। ठीक है, तो सब्बह का मतलब होता है तस्बीह बयान करना, और तस्बीह का मतलब क्या होता है? आप किसी को पाक डिक्लेयर कर रहे हैं। पाक डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? पाक डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है कि उससे आप नापाकी के इहतमालात को दूर कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ना शख्स, ये पाक है। पाक होने का मतलब कि ये शख्स नापाक नहीं है, ठीक है, ये नापाक नहीं है, ठीक है। तो पाकी बयान करने का मतलब हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम उससे नापाकी को दूर कर रहे हैं। और नापाकी क्या चीज होती है? नापाकी जो होती है एक फॉल्ट होता है, फॉल्ट, ठीक है, एक मिस्टेक, एक गलती, ठीक है। इसलिए कि जो एक पसंदीदा चीज है ना, पसंदीदा चीज वो है पाकी, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट जो होता है वो नापसंदीदा चीज है, यानी नापाकी, ठीक है। तो नापाकी का मतलब होता है नापसंदीदा स्टेट, ठीक है। तो जो भी नापसंदीदा चीज है उसको हम दूर कर रहे हैं कि जी इसके अंदर नापाकी या नापसंदीदगी वाला कोई कोई कॉन्सेप्ट इसके साथ नहीं है, कोई मसला इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो अब ये नापाकी का मतलब फिर क्या हुआ, ठीक है। इस नापाकी का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि जैसे कि हम जिस चीज को पाक समझते हैं और हम इसको नापाक समझते हैं, ठीक है। तो यही मामला जो है वो अल्लाह ताला के साथ भी है, ऐसा नहीं है। हमारी पाकी और नापाकी का मतलब क्या होता है कि हम जो है वो यानी हदस अकबर या हदस असगर के जरिए से नापाक हो जाते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर कोई यानी बाथरूम चले जाते हैं, ठीक है, पेशाब कर लेते हैं या कोई यानी पखाना कर लेते हैं जिसको कहना, राइट। तो फिर हम जो है वो अब नापाक हो जाते हैं कि अब हम जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, या गैस खारिज हो जाती है तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसको कहते हैं जी हदस असगर, नापाकी हो गई। अब आपको वापस पाकी में आने के लिए वजू करना पड़ता है, तो आप पाक हो जाते हैं, अब आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, अब आप कुरान भी छू सकते हैं, ठीक है। या ये कि जनाबत की हालत आ गई तो फिर हम नापाक हो जाते हैं। अब उस वाली नापाकी से निकलने के लिए हमें गुसल करना पड़ता है, शरी गुसल जिसको कहते हैं, ठीक है। शरी गुसल करने के बाद जो है तब हम नमाज और कुरान छूने के काबिल होते हैं, मस्जिद में दाखिल होने के काबिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी हमारी डेफिनेशन है पाकी और नापाकी की, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमने कोई झूठ बोल दिया तो हम नापाक हो गए, ठीक है ना। इसलिए अब झूठ बोलने के बाद हम कुरान नहीं पढ़ सकते, हम वजू नहीं कर सकते, या हम जो है वो किसी काम को गलत कर जाएं तो हम नापाक हो गए, ठीक है। हमारे साथ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला के साथ पाकी और नापाकी का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के यहाँ तो नाउज़बिल्ला, यानी नाउज़बिल्ला ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ तो ये हदस असगर और हदस अकबर वाला कोई मामला नहीं है ना। तो अल्लाह के यहाँ पाकी और नापाकी अल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है कि अल्लाह ताला जो है वो किसी भी किस्म की गलती से पाक है। कोई भी गलती, कोई भी नापसंदीदा चीज, कोई भी मिस्टेक, कोई भी मिसकैलकुलेशन, मिस जजमेंट, इन सारी चीजों से अल्लाह ताला पाक है। यानी अल्लाह ताला जो है वो परफेक्ट है और अल्लाह ताला का हर काम परफेक्ट है। उसके अंदर 1% भी कमी नहीं है, 0.1% भी कमी नहीं है, 0.00000001% भी कमी नहीं है अल्लाह ताला के कामों के अंदर, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला, ये है अल्लाह ताला की पाकी जो कि हम बयान करते हैं जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं या जब हम सुभान रब्बियल आला कहते हैं, तो दरअसल हम ये कह रहे होते हैं, ठीक है, इन्नी कुंतु मिनज ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका। ये भी जब हम कह रहे होते हैं ना तो सुभानका के अंदर भी क्या है? तस्बीह है अल्लाह ताला की, ठीक है। तो इन्नी कुंतु मिनज ज़ालिमीन, क्यों हम आगे कह रहे होते हैं? इसलिए कह रहे होते हैं कि अल्लाह जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, ये प्रॉब्लम्स आपकी मिसकैलकुलेशन की वजह से नहीं क्रिएट हुई मेरी जिंदगी के अंदर, आपकी मिस जजमेंट कि मैं तो बड़ा नेक था, मैं तो आपकी बड़ी इबादतें करता था, राइट, लेकिन आपने मुझे गलत समझा, मुझे कोई आपने बुरा आदमी समझ लिया, इस वजह से मेरी जिंदगी में कुछ मुश्किलात भेज दी, आपसे नाउज बिल्ला मिस जजमेंट हो गई मेरे बारे में, ठीक है ना। मैं तो बड़ा इनाम और इकराम का मुस्तहिक था और आपने इनाम और इकराम तो मुझे दिया नहीं, बल्कि आपने तो मुझे कुछ मुसीबतें अता फरमा दी, तो आपसे हो गई मिस जजमेंट, राइट, नाउज बिल्ला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या है, अल्लाह ताला ने अपने यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया, क्या सिखलाया कि देखो तुम्हारे साथ जो ये मामला हुआ है ना, ये तुम्हारी अपनी मिस जजमेंट की वजह से हो गया। गुनाह तो उन्होंने भी नहीं किया था, लेकिन मिस जजमेंट वाला मामला मैंने नहीं किया था, बल्कि तुमने किया था मिस जजमेंट वाला मामला, इसलिए तुम इस बात का इकरार कर लो। तुम यूनुस अलैहिस्सलाम ने 100% इसका इकरार कर लिया, फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, कि ऐ अल्लाह आप मिस जजमेंट से बिल्कुल पाक हैं, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझसे मिस जजमेंट हो गई, ठीक है। तो यही एटीट्यूड, ये सारे के सारे इंसानों को यही एटीट्यूड सचता है और ये हमें भी यही सचता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है इन सिंपलर वर्ड्स? इसका मतलब ये होता है दीदे कसूर, ठीक है, अपने कसूर की तरफ नजर रखना, अपने कसूर पर नजर रखना और ब्लेम गेम ना खेलना, ठीक है, दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम ना खेलना, चाहे वो अल्लाह ताला की जात हो, चाहे वो दूसरे लोगों की जात हो, दूसरे लोगों उनके साथ जो हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं ना हर वक्त कि उसकी वजह से ऐसा हो गया और उसकी वजह से ऐसा हो गया और उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी बजाय जो है ना अपने गिरेबान में झांक करके देखो दूसरा बंदा जो है ना उसको तुम उसकी परवाह ना करो, वो अल्लाह का बंदा है, वो जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह की मर्जी से ही कर रहा है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला वो खुद क्या कर रहा है, अल्लाह ताला उससे करवा रहे हैं, ठीक है। तो असल में जो मुसीबत आई हुई है ना, वो मुसीबत मेरे अपने करतूतों की वजह से है, क्योंकि अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला जो है वो कोई मिसमैनेजमेंट और मिस जजमेंट वाले काम नहीं करते हैं, ठीक है। डज इट मीन कि अल्लाह सुब्हान व तआला को खुदा का अल्फाज से पुकारना इज नॉट करेक्ट? अच्छा, ये तो आप अगली वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई तस्बीह वाली बात। अब इसके आगे जो उन्होंने फरमाया है कि अल्लाह ताला को अच्छे नामों से ही पुकारें, तो इसके बारे में जो उलमाए कराम का जिन्होंने दीन को सही समझा है, उनका यही यही तालीम है कि अल्लाह ताला को सिर्फ उन्हीं नामों से पुकारने चाहिए जो कि अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद करे हैं। दूसरे नाम जो हैं वो उनसे पुकारने अल्लाह ताला को पुकारना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो खुदा वाली बात जो है ना, खुदा, तो खुदा जो है ये एक कॉमन टर्म है, ठीक है। तो अरबी के अंदर इसको कहते हैं इलाह, ठीक है, इलाह। फारसी में कहते हैं खुदा और अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, ठीक है। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये कॉमन टर्म्स हैं, ये डेफिनेट टर्म्स नहीं है, ये इनडेफिनेट टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इसको आप इस्तेमाल किसी के लिए भी कर सकते हैं, इलाह को जो है वो किसी बुत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये इस कौम का इलाह जो है ना वो ये वाला बुत है, और फारसी में कहें तो कहते हैं भाई इस कौम का खुदा जो है वो आग है, और किसी और के लिए कहें तो इस कौम का खुदा, इस कौम का जो गॉड है वो गॉड जो है वो जीसस क्राइस्ट है, नाउज़बिल्ला, ठीक है। तो खुदा, इलाह और गॉड, ये तो जनरल टर्म्स हैं। तो ये उलमा का मौकफ ये है कि ये टर्म्स जो है ना ये आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ठीक है, इनको इस्तेमाल, इन तीनों टर्म्स को इस्तेमाल करना अल्लाह के लिए ये हराम के दर्जे में नहीं आता, लेकिन इन टर्म्स को रिप्लेस नहीं कर देना चाहिए। यानी अल्लाह के नाम को या अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम अल्लाह ने बयान करवाए फरमाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचवाए हैं, तो उन नामों को रिप्लेस करके इन टर्म्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों का ये मौकफ रहा है कि जी ये जो अमेरिकन है ना, तो हमें तो अमेरिकन को मुसलमान कर लेना चाहिए ताकि हमारे मसले खत्म हो जाए, ठीक है ना, वो हमारे पीछे ना पड़े, हम अमेरिका में अच्छे से जिंदगी गुजार सकें, राइट, कोई हमें बॉदर ना करे, सारे अमेरिकन मुसलमान हो जाए तो ये मसले हल हो जाएंगे हमारे, अमेरिका के अंदर अच्छे से हम एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है, अमेरिकन लाइफ को हम अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ना, जो कि इस तरह से फिर दीन की तबलीग का काम करते हैं, जो कि खिलाफ सुन्नत तरीका होता है तबलीग करना, ठीक है, तबलीग करने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, हर तरीका तबलीग करने का वो सुन्नत के मुताबिक नहीं होता, ठीक है। तो खिलाफ सुन्नत तरीके से तबलीग करने के ऊपर आ जाए ना, तो फिर उसके बाद बढ़ते ही चले जाते हैं उस खिलाफ सुन्नत तरीके के ऊपर, ठीक है ना। तो फिर ऐसे लोगों के जहन में फिर ये बात भी आती है कि भाई ये जो वर्ड अल्लाह है ना, तो इससे तो ये लोग बड़े बॉदर होते हैं, ठीक है ना, कि ये इस टर्म से फेमिलियर नहीं है, तो ये जो है ना गॉड के टर्म से ज्यादा फेमिलियर है, तो वी शुडंट यूज द वर्ड अल्लाह इन अमेरिका, ठीक है ना। कुछ लोगों ने एक जमाने में ऐसी राय भी पेश करी थी, ठीक है, कि हमें अमेरिका के अंदर जो है ना वो अल्लाह का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें गॉड ही कहना चाहिए, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू द सेम थिंग, ठीक है ना, तो हमें गॉड इस्तेमाल करना चाहिए। अब मौलवी के साथ मसला ये है कि मौलवी जो है ना वो ऐसी बातों पे चुप नहीं रह सकता, यही सारा का सारा मसला है मौलवी का, ठीक है, कि वो जो है ना इन बातों के ऊपर चुप नहीं रह सकता, उसको खुदा के सामने जवाब देने की फिक्र पड़ जाती है कि भाई मैं अगर चुप रह गया तो अल्लाह ताला मेरा गिरबान पकड़ेंगे क़यामत के दिन कि तुमने क्यों नहीं बोला, हमने तो तुम्हें दीन का इल्म अता फरमाया था, तुमने क्यों नहीं इस बात की इस्लाह करी, ठीक है। तो वो बेचारा बोल पड़ता है, और जब वो बोल पड़ता है तो फिर ऐसे दीनदार लोग जो होते हैं ना, वो उनकी निगाहों के अंदर मौलवी खटकना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि ये सारा का सारा ना इन ये जो दकियानूसी किस्म के मौलवी हैं, ये तो इनके तो बात समझ में नहीं आती है, ये तो मॉडर्न तकाजों से वाकिफ नहीं है, ये तो समझ में नहीं आती है इनकी बात, राइट। तो ये हर वक्त जो है ना इनको कोई ना कोई मसला ही खड़ा हो जाता है, ठीक है, हम तो दीन का काम कर रहे हैं, हम तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की मेहनत कर रहे हैं, और ये जो है हमारी मेहनत के अंदर रुकावटें डाल रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं करो और ऐसे करो और अल्लाह का नाम इस्तेमाल करो और गॉड का नाम उसको रिप्लेस ना करो, ठीक है ना। तो ये सारा मसला जो है ना ये दीनदारों को हो जाता है मौलवियों के साथ, ठीक है ना। तो ये सारा मसला दुनिया के अंदर आज का जो है ना, ठीक है, ये आज का सारा मसला, और ये चीज आगे भी अल्लाह रहम करे आगे और कितनी ये बढ़ने वाली है ये बात, ठीक है, ये सारा मसला है मौलवी के साथ, और मौलवी की वो मजबूरी है, ठीक है, कि उसने तो यानी बताना पड़ जाता है उसको कि भाई ये काम तो सही नहीं है, इस तरह से तो आप तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस तरीके से तो आप जो है वो कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो मौलवी ने कहा कि नहीं भाई ऐसा आप नहीं कर सकते, तो वो क्यों कहा, वो इसी वजह से कहा, اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ اہم ہے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اور اس کی دلیلیں پھر قرآن اور حدیث دونوں سے مل جاتی ہیں. سب بحسم ربک الاعلی، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا تذکرہ خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے نام کا کی اہمیت بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ کے نام کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال ہے اس کے اوپر؟ تو خدا، یا آپ کے شاہد صاحب سوال کا جواب یہ ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو ریپلیس ہی کرنا شروع کر دیں اللہ کے ناموں سے. مسئلہ اسی طرح اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا اس کی تنزیہ و تقدیس کے خلاف ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ناموں کو کسی جو مخصوص ہیں، یعنی اللہ کا ہر نام نہیں ہے جو کہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن مخصوص نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جیسے کہ رحمان، رزاق، غفار، قدوس. ٹھیک ہے، اس کی لسٹ ایکچولی میں بھول جاتا ہوں کہ ایگزیکٹ لسٹ جو ہے وہ علماء سے معلوم کر کے بھی ایک دفعہ بنا لی جائے کہ ایگزیکٹلی کون کون سے نام ہیں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہیں اور دوسروں کے لیے جائز نہیں ہیں، لیکن یہ میجر نام ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کے رکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، عبد الرحمان رکھتے ہیں، عبد الرزاق رکھتے ہیں، عبد الغفار، عبد القدوس. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ عبد ال تو ختم ہو جاتا ہے اور صرف رحمان رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ آج کل اس معاملے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو ناموں کے اختصار کا شوق ہے، تو عبد الرحمان کو رحمان، عبد الرزاق کو رزاق، اور عبد الغفار کو غفار بے تکلف کہتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں. ہاں، واحد بھی ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، نام ہوتا ہے عبد الواحد، اور ہم اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ واحد. واحد انکل آ گئے، واحد صاحب آ گئے، رائٹ؟ تو واحد بھی ان میں سے ایک نام ہے. اچھا، تو سننے والا اور کہنے والا دونوں گناہگار ہو جاتے ہیں. اور یہ گناہ بے لذت، گناہ بے لذت کا کیا مطلب؟ کہ کچھ تو گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو کرنے سے انسان کے نفس کو لذت ملتی ہے، رائٹ؟ حرام کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کچھ مزے کرتا ہے اس قسم کے، تو اس کو سو کال لذت مل رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی لذت بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے، بس ایسے ہی گناہ اس کے اندر ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ گناہ بے لذت کہلاتے ہیں. تو یہ گناہ بے لذت رات دن بلا وجہ ہوتا رہتا ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ اس اچھا جی آپ کے اس دا سمد از انکلوڈیڈ ان دس نہیں، مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں ہاں یا نہ میں جواب نہیں دوں گا. یہ انشاءاللہ کسی مفتی لیول کے علماء یا ذرا مور سینئر علماء سے اس کو کنفرم کروا لیں گے انشاءاللہ. الصمد، الصمد، الصمد. مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے. عبد الماجد، ابو ماجد کہنا بھی، ماجد کو ابو ماجد کیا سمجھ میں نہیں آیا میرے، کہنا بھی اس حکم میں شامل ہے. ماجد کو ابو ماجد، ماجد کے باپ کو، اچھا ماجد کے باپ کو. اب ماجد اگر ان ناموں میں آیا ہے نا، تو ابو ماجد اگر ان ناموں میں ماجد شامل ہے تو پھر تو ابو ماجد نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ماجد ان ناموں میں، جیسے کہ رحیم ہے، رحیم، ٹھیک ہے، رحیم نہیں ہے ایسا نام. ٹھیک ہے، تو کسی شخص کو عبد الرحیم کہنا یہ بھی جائز ہے، اگر اس کا نام عبد الرحیم ہے اس کو عبد الرحیم ہی کہیں، لیکن رحیم اگر کہہ دیں گے نا تو وہ گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ رحیم ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جو کہ اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. رحیم کا لفظ جو ہے قرآن کے لیے بھی آیا، رحیم کا لفظ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آیا، اور رحیم جو ہے وہ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ رحمت کی صفت اس کے اندر ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو. تو رحیم ان ناموں میں سے نام نہیں ہے. البتہ رحمان ایک بالکل ڈفرنٹ قسم کی صفت ہے. رحمان ایک ایسی صفت ہے کہ یہ وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہوتی ہے، ہر چیز پر بھاری ہوتی ہے. اور یہ جو صفت ہے نا رحمت کی، یہ کسی مخلوق کے اندر پوسیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے رحمان ناجائز ہے کسی انسان کو یا کسی مخلوق کو کہنا. ہاں انشاءاللہ یاد کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کتاب میں ہو سکتا ہے علماء نے لکھا ہو، یا انشاءاللہ امید ہے کہ مل جائے. اچھا یہ ہو گیا، اور پھر یہ گناہ بے لذت بلا وجہ ہوتا رہتا ہے. اچھا، بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ اسم سے خود مراد، خود مسمہ کی ذات مراد دی ہے. مسمہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور مسمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ जिसका के नाम लिया गया है, द वन हु वॉज नेम्ड, ठीक है, मुसम्मा की ये ट्रांसलेशन बनती है। तो खुद मुसम्मा, मुसम्मा कौन है? अल्लाह ताला की जात है। तो यहाँ पर इस्मा रब्बिक से मुराद जो है, कुछ मुफस्सरीन ने फरमाई कि असल में यहाँ पर यानी सब्बे सब्बहल यानी सब्बहल्ला ही मुराद है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो, ठीक है। और अरबी जुबान के एतबार से इसकी गुंजाइश भी है, क्योंकि कभी ऐसा होता है अरबी जुबान के अंदर कि इसम ज़ात कह करके जो है वो मुसम्मा मुराद दी जाती है, ठीक है। तो अरबी जुबान जब भी कहते हैं ना कि तफसीर जो है वो आप सिर्फ सिर्फ यानी हदीस की नॉलेज के बेसिस पर भी आप सिर्फ तफसीर नहीं कर सकते, बल्कि तफसीर करने के लिए अरबी जुबान की बहुत गहरी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तब आप जाके तफसीर कर सकते हैं। जब भी जो उलमाए कराम 8 साल में मदरसे में आलम आलम कोर्स बन के निकलते हैं ना, तो वो अरबी जुबान के ऐसी ऐसी यानी गहराइयां पढ़ाई जा रही होती हैं जिनका हम वहमो गुमान भी नहीं कर सकते, ठीक है। 5वें साल के अंदर जाकर के आप किताबें देखें जो 5वें साल आलम कोर्स का होता है, कि दीवान हमासा पढ़ाई जा रही है, दीवान मुतनबी पढ़ाई जा रही है, यानी जमाने जाहिलियत के जो अशार थे ना, जो शोरा थे, उनके दीवान पढ़ाए जा रहे होते हैं। हम तो उसका एक लफ्ज भी हमारे समझ में नहीं आता, इतना ज्यादा मुश्किल मुश्किल वो दीवान होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जा रही होती हैं? क्योंकि उलमा को जो है ना वो इस लेवल ऑफ डिटेल की जरूरत पड़ती है, तभी तो वो उलमा कहलाते हैं, वरना तो हमें से हर बंदा ये जो है वो अपने आप को आलिम समझना शुरू हो जाए, ठीक है ना। हमने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई होती हैं। तो अरबी जुबान के अंदर इसकी गुंजाइश भी है, और कुरान करीम में भी इस मानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अरबी जुबान में गुंजाइश पता कैसे लगती है कि जो जो ये जो यानी पुराने शुआरा थे उनके कलाम के अंदर ऐसे इस्तेमाल मिलता है, ठीक है। तो अरबी जुबान में गुंजाइश का मतलब ये होता है कि ये जो शुआरा थे अरब के, पुराने पुराने शुआरा, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले के शुआरा, तो उनके कलाम के अंदर उन्होंने इस तरीके से अरबी जुबान में इस्तेमाल किए होते हैं, ठीक है। नसर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, शेर की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि कुरान करीम जो है वो शेर के तर्स पे अल्लाह ताला ने नाजिल किया, वो शेर है नहीं लेकिन अशआर के तर्स के ऊपर नाजिल किया। तो इस वजह से कुरान करीम को समझने के लिए अरबी शायरी का पढ़ना जो है वो नसर के मुकाबले में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, आगे फरमाते हैं, कुरान करीम में भी इस मानी के लिए इस्तेमाल हुआ है, और हदीस में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे को नमाज के सजदे में पढ़ने का हुक्म दिया, उसकी तामील में जो कलमा इख्तियार किया गया वो क्या है? सुभाना रब्बियल आला है ना, सुभाना इस्म रब्बिकल आला नहीं है बल्कि सुभाना रब्बियल आला है। इससे भी मालूम होता है कि इस्म इस जगह मकसूद नहीं बल्कि खुद मुसम्मा मुराद है, ठीक है। तो देखें, ये जो उन्होंने जो यानी उलमा में इल्मी इख्तलाफात होते हैं ना, तो यहाँ पर इल्मी इख्तलाफ की एक मिसाल आ गई कि एक जो ग्रुप ऑफ उलमा है उनका क्या मौकफ है कि यहाँ पर इस्म ही मुराद है, ठीक है, और दूसरे का, दूसरे ग्रुप ऑफ उलमा का मौकफ ये है कि नहीं, इस्म नहीं बल्कि मुसम्मा मुराद है, ठीक है। तो इस्म वाले जो लोग हैं जो इस्म की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए तो किसी मजीद दलील की जरूरत भी नहीं है, वो तो कहते हैं भाई ये तो अल्फाज ऐसे ही है, ठीक है, इस्म की बात हो रही है तो इस्म ही मुराद है। लेकिन जो दूसरे हैं जो कि जाहिर से हट के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वो अपनी ख्वाहिशात की बेसिस पर नहीं बात कर रहे बल्कि वो भी दलील की बेसिस पर बात कर रहे हैं। और देखें, उनके पास ये यानी दलील मौजूद है कि देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि जी तुम ये नमाज के अंदर पढ़ा करो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो सुभाना इस्म रब्बिकल आला करने पढ़ने के लिए नहीं कहा बल्कि सुभाना रब्बियल आला पढ़ने के लिए कहा, ठीक है, यानी कि पाक है मेरे रब की, रब जो कि आला है, ठीक है। तो दलीलें उलमा के दोनों साइड्स पर होती हैं, इल्मी इख्तलाफ होना कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। और इसको जो है ना वजह बना करके उलमा से लोगों को बदजन करना, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का काम होता है, ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि मौलवी तो आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, मौलवी तो ये कहते रहते हैं, ये शैतान होता है, इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट, उलमा से काटना चाहते हैं। जब उलमा से काट लेगा तो फिर ऑटोमेटिकली लोग जो है वो ही शुरू कर देते हैं, तो इस वजह हर बार इस्तेमाल कर अनम्यूटेड है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। कायनात में लतीफ और दकीक हिकमतें, अब आप कर दें फोन से कनेक्ट, मेरे सामने भी ये विंडो है नहीं। तखलीक कायनात में लतीफ और दकीक हिकमतें, फरमाते हैं कि अल्लाह का फसवा वल्लजी कद्दरा फहदा, ठीक है, कि ये सब रब्बे आला की सिफात का जिक्र है जो तख्लीक कायनात में उसकी हिकमत बालगा और कुदरत कामिला के मुशाहिदे से मुतालक है। इनमें पहली सिफत खलका है, तो खलका के मानी महज सनअत गरी के नहीं है बल्कि अदम से बगैर किसी मादा साबिका के वजूद में लाना है। ठीक है, तो सनत क्या चीज होती है और तखलीक क्या चीज होती है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। सनत जो होती है ना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उर्दू में उसको उसके लिए सनत के लफ्ज होता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर कब करते हैं कि जब आपके पास रॉ मटेरियल कहीं से पहुंच जाते हैं, मुख्तलिफ जो जो चीजें आपको चाहिए होती हैं वो रॉ मटेरियल की शक्ल में किसी फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं। अब फैक्ट्री वाले जो है ना सिर्फ उन चीजों को रिफाइन कर रहे होते हैं और रिफाइन करके उनको आपस में एक खास अंदाज में जोड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो इसको तखलीक नहीं कहते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करना कहते हैं। ठीक है, तखलीक का मतलब क्या होता है, जैसे उन्होंने लिखा कि कोई रॉ मटेरियल ना हो, कोई भी मटेरियल पहले से मौजूद ना हो बल्कि विदाउट एनी बेसिस किसी चीज को बिल्कुल अदम से वजूद में लाना, फ्रॉम नथिंग इंटू समथिंग, ठीक है, तो इसको तखलीक कहते हैं। और ये जो तखलीक है ये काम किसी मखलूक के बस में नहीं है, सिर्फ हक तआला शानहू की कुदरत कामिला है कि बगैर किसी साबिक मादे के जब चाहते हैं और जिस चीज को चाहते हैं अदम से वजूद में ले आते हैं। ठीक है, अब ये जो तखलीक वाला कॉन्सेप्ट है इसको मजीद सुन लें कि तखलीक जो है ना वो कोई मखलूक तो कर नहीं सकती, ठीक है, मखलूक खुद के लिए तो जरूरी है कि वो किसी यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्ट्स को लेकर के कोई चीज मैन्युफैक्चर कर ले, यानी सनत कर ले, लेकिन एक तखलीक ये एक ऐसा काम है जो कि मखलूक करती है जो कि तखलीक से मुशाबे है, तखलीक है नहीं लेकिन तखलीक से मुशाबहत रखती है और इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको मना फरमा दिया शरीयत मुहम्मदी के अंदर। जी इतने तो मैंने आप लोगों को टिप्स दे दिए, अब आप इसका जवाब देते हैं कि वो क्या चीज है, कि वो तखलीक है नहीं लेकिन वो तखलीक से बड़ी क्लोज है, करीब है उससे तखलीक से, और शरीयत मुहम्मदी में उसको मना कर दिया। ठीक है जी, माशाल्लाह, मुसव्वरी तस्वीर बनाना, ठीक है, इसलिए कि तस्वीर बनाने के लिए आप चीजें क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप कागज इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, आप पेपर पेंसिल, आप पेंसिल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो स्याही होती है वो स्याही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो कम से कम ये तीन चीजें जो हैं ये तो पहले से मौजूद हैं, तो आप एक तरह से मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जब इसको इस्तेमाल करते हुए आप कोई ऐसी चीज अपने जहन से, अपनी इमेजिनेशन से कोई ऐसी चीज बनाए ना कि जो कि बिल्कुल मखलूक के मुशाबे हो, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है उसके एग्जैक्ट मुशाबे नजर आनी शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो वो चीज शरीयत मुहम्मदी के अंदर मना है, ठीक है, क्योंकि वो असल में तो कोई आपने क्रिएशन करी तो नहीं है ना, लेकिन वो क्रिएशन जो है ना वो लीड करती है शिर्क की तरफ, लीड कर सकती है शिर्क की तरफ, और शरीयत मुहम्मदी का ये उसूल है कि शरीयत मुहम्मदी ने सिर्फ गुनाह को हराम नहीं करार दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में ये खसूसियत है, पिछले नबियों की शरीयत में ये खसूसियत नहीं थी, पिछले नबियों की शरीयत में गुनाह मना था, असबाब गुनाह बहुत सारे नहीं मना थे, ठीक है, बहुत सारे असबाब गुनाह ऐसे थे यानी जो गुनाह तक पहुंचा देने का सबब बनते हैं वो मना नहीं थे, ठीक है, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ताला ने असबाब गुनाह को भी मना फरमाया, ठीक है ना, तो ये तस्वीर जो है वो असबाब गुनाह की तक के सबब बनती है, इस वजह से इस शरीयत के अंदर इसको भी मना कर दिया गया, ठीक है, तो इस वजह से बच्चे जो है ना जो घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं शरीयत के मुताबिक घर के मामलात कर चलाने की, तो वो घर के अंदर फिर तस्वीरों को नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन आज के दौर के अंदर ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि हर चीज में तस्वीर है, ठीक है ना, हर टॉय जो आप बच्चे के लिए खरीदते हैं उस टॉय के अंदर तस्वीरें होती हैं उसके ऊपर लगी हुई, या टॉयज खुद ही जो है वो बाकायदा बुत की शक्ल में होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई डॉल हो, पूरा का पूरा बुत होता है, ठीक है, क्या आवाज बंद हो गई है, आ रही है किसी को, अच्छा जज़ाकुमुल्लाह, तो जो बस ठीक है जज़ाकुमुल्लाह, एक ठीक है, तो ये चीज जो है ना आज के दौर के अंदर बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, कि कैसे लेकर के आए ऐसे टॉयज, कैसे जो है वो ऐसी चीजें, हत्ता कि हर किताब के अंदर, स्कूल की किताब हो या स्टोरी बुक हो या कोई भी हो, उसके अंदर तस्वीरें ही तस्वीरें, ठीक है ना। तो इस वजह से ना इस मसले को थोड़ा सा, बस पूरी तो तफसील मैं आपको थोड़े टाइम में नहीं बता सकूंगा, लेकिन इतना कम से कम आप जो है वो एक तो बच्चों को समझाने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताया है कि ये तख्लीक से मुशाबियत रखना होता है और अल्लाह ताला ने अपनी मुशाबियत इख्तियार करने को हराम करार दिया है, ठीक है ना। और ये कि ये चीज जो है ना पे शिर्क की तरफ भी इंसान को लेके जा सकती है, ठीक है। तो ये दोनों वजूहात की वजह से शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तस्वीर बनाना और तस्वीर रखना जो है वो नाजायज करार दिया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी और तफसीलात ये हैं कि अगर आप बिल्कुल ही बेतस्वीर किस्म की चीजें नहीं रख सकते हो ना, तो तस्वीर की डेफिनेशन को फिर समझना चाहिए कि तस्वीर की डेफिनेशन क्या है। तस्वीर की डेफिनेशन यही है कि जो कि मखलूक से मुशाबहत रखती हो। तो अगर आप इस मुशाबहत को किसी तरीके से मस्क कर दें, ठीक है ना, किसी तरीके से मस्क कर दें, खत्म कर दें, खराब कर दें, तो वो मुशाबहत खत्म हो जाएगी ना, तो फिर वो चीज जो है वो तस्वीर के जुमरे में या बुत के जुमरे में, वो टॉय, ठीक है, वो टॉय बुत के जुमरे में फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो मुशाबहत के लिए उलमाए कराम ने किस चीज को यानी डिसाइडिंग फैक्टर करार दिया, वो करार दिया चेहरे को, यानी चेहरा अगर बिल्कुल किसी जानदार चीज के चेहरे जैसा है तो वो फिर बुद्ध के जुमरे में आएगी या वो तस्वीर के जुमरे में वो चीज आएगी, वो तस्वीर आएगी, ठीक है। तो चेहरे को मस्क कर दें, यानी आंखें जो है ना वो किसी तरीके से वहां से खत्म कर दें, ठीक है ना, या तो आंखों के ऊपर मार्कर से उसको कवर कर दें, ठीक है, या कुछ चश्मा बना दें। अगर किसी बुक को आप जो है वो जी बहुत प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, खराब नहीं करना चाहते उसके ऊपर मार्कर से करके, ठीक है ना, तो आप उसके ऊपर चश्मा बना दें। चश्मा बनाने से भी तस्वीर खत्म हो जाएगी और वो चेहरा जो है ना वो फिर इस तरह की चीज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, तस्वीर के डेफिनेशन में वो चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक चीज है, या फिर ये आप उसके ऊपर कोई चीज चिपका दें, ठीक है, चिपकाने से भी अच्छा। बुक के अंदर भी बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, तो कुछ उलमा तो उसके भी खिलाफ है कि अंदर भी तस्वीर कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यानी बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर कर सकते हैं तो ये अंदर की भी तस्वीरों को इसी तरीके से उनके चेहरों को मस्क कर दें, नहीं कर सकते तो कम से कम जो टाइटल पेज है उसकी तो तस्वीर को कर देना मस्क, ठीक है। कपड़ों पे तस्वीर लगी हो तो नमाज, यार ये नमाज वाला हम तो तस्वीर के होने ही को के बारे में कर रहे हैं, आप जो है वो आगे बढ़ के नमाज के बारे में सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो नमाज तो होने का नाजायज, उलमा ने तो खैर नाजायज ही करार दिया है कि नमाज हो जाए। माने यहाँ तो मसले ये हुए हैं कि जी वो बैग के ऊपर पूरी तस्वीर बनी होती है, ठीक है, और उस मस्जिद में आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या किया जाए उनका, ठीक है। तो तस्वीर को जो है वो मस्क कर देना चाहिए, हरगिज हरगिज तस्वीर वाली चीज को तो मस्जिद के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए। अगर कोई तस्वीर कैमरे में हो तो उस कमरे में, कमरे में हो तो उस कमरे में नमाज नहीं होती, नहीं कमरे में नमाज हो जाती है, तस्वीर जो है वो सामने नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो हदीस है सही बिल्कुल है ना कि जी जिस कमरे के अंदर तस्वीर हो या कुत्ता हो तो वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो नमाज तो अदा तो हो जाती है लेकिन रहमत के फरिश्तों के बगैर ही अदा हो जाती है। मोबाइल में तस्वीर बनाना, मोबाइल में तस्वीर बनाना एक बहुत ही मारकतुल आरा किस्म का मसला है इस दौर के अंदर, जिसके अंदर उलमा की एक बड़ी बड़ा तबका इस दौर के अंदर इसका कायल हो गया है, बड़े बड़े उलमा, ठीक है, वो इसका कायल हो गया है कि ये जो डिजिटल फोटो होती है, डिजिटल फोटो जो है ना, ये तस्वीर आप अपने अपने तखय्युल से ये तस्वीर नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि एक जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मखलूक है, मौजूद है, तो उसकी जब आप पिक्चर ले रहे होते हैं ना, तो वो आप एक इमेज जो है वो उसका कैप्चर कर रहे होते हैं, ठीक है, आप कुछ नई तख्लीक नहीं कर रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस बात को दलील बना करके उलमा जो है आजकल के बहुत सारे उलमा वो डिजिटल फोटो और जो जिसके अंदर मोबाइल भी आ जाता है, जिसके अंदर लैपटॉप वगैरह भी आ जाता है और टीवी टीवी भी उसके अंदर आ जाता है, यानी फोटो की हद तक खाली, ठीक है, तो वो उसको फिर जायज करार देते हैं। लेकिन बहुत सारे बड़े उलमा आज भी ऐसे भी हैं जो कि उसको भी जायज करार नहीं देते, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो जो भी हो, ठीक है। और इसी तरह कैमरे की फोटो भी इसी वजह से वो जायज करार देते हैं कि अगरचे के वो कागज के ऊपर प्रिंट हो जाती है लेकिन वो भी कोई नई तखय्युल नहीं होता, तो इस वजह से, ठीक है। और एक तो यही है कि नई नया तखय्युलाती कोई कोई आपने चीज तो नहीं बनाई है ना, वो तो ऑलरेडी चीज जो चीज बनी हुई है ये उसका डिट्टो कॉपी इमेज है, रियल इमेज है बल्कि उसका, यानी कुछ भी आपने उसमें तब्दीली नहीं करी है अपनी तरफ से, उसको कुछ चेंज नहीं किया है, जैसा है वैसा ही उसका आपने इमेज ले लिया। और दूसरी चीज ये भी कहते हैं कि जी यानी अभी जो है ना वो यानी शिर्क का जो अंदेशा है वो इन तस्वीरों के साथ होता नहीं है, ठीक है, अलबत्ता होना तो होता तो खैर है, लेकिन बहरहाल अब एक होता है ना कि भी इतना हर्ज का भी तो मामला होता है ना कि जी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा आम हो गई है और उसके अंदर ये है कि भाई उलमा जो है वो भी इस बात को देख रहे हैं कि उसके बगैर जो है वो मामलात आज के दौर के अंदर नहीं चल सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो उस वजह से फिर उसकी जवाज का फतवा उन्होंने दिया है। लेकिन एक एहतमाल इसके अंदर फिर भी है कि जी आप किसी ऐसे शख्स की तस्वीर बना लें कि जो कि फिर बाद में जाकर के शिर्क का बायस बन जाए, ठीक है, तो ये भी मुमकिन है। तो इसकी मुमकिनात फिर भी होते हैं, लेकिन बहरहाल एहतियात तो यही है कि इनसे दूर रहा जाए। खैर ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम पिछली एक क्लास के अंदर भी काफी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा उसमें मजीद नहीं जाऊंगा। अभी हम फिलहाल आगे चलते हैं, किसी और मौके पर के ऊपर अगर कोई सवाल आया तो फिर इसको देख लेंगे। अच्छा ये हो गया। अच्छा आगे फरमाते हैं कि फसव्वा, तो दूसरी सिफत इस तख्लीक ही के साथ वाबस्ता फसव्वा है जो तस्विया से मुश्तक है, यानी तस्विया के लफ्ज से डराइव्ड है, और इसके लफ्जी मानी बराबर करने के हैं, और मुराद बराबर करने से ये है कि हर चीज को जो वजूद अता फरमाया उसकी जसामत और शक्ल सूरत और आज़ा और अज्जा की वज़ा व हैयत में एक खास तनासुब मलहूज रख कर ये वजूद बख्शा गया है। इंसान और हर जानवर को उसकी जरूरियात के मुताबिक मुनासिब आज़ा दिए गए हैं और उन आज़ा की जसामत और वज़ा व हैयत उसकी जरूरियात के मुनासिब बनाई गई हैं। हाथ पांव और उनकी उंगलियों के पोरों में ऐसे जोड़ रखे और कुदरती स्प्रिंग लगाए कि वो हर तरफ मोड़े तोड़े और तह किए जा सकते हैं। इसी तरह दूसरे एक एक उज्व को देख को देखो इसी तरह दूसरे एक एक उसको देखो, ये हैरत अंगेज तनासुब खुद इंसान को खालिक कायनात की हिकमत और कुदरत पर ईमान लाने के लिए काफी है। ठीक है, तो बड़ी यानी इबरत की निगाह से अगर हम हर चीज को देखें तो हमें ये बात नजर आती है। मिसाल के तौर पर अभी छोटे बच्चे से बात हो रही थी तो वो
हेलो
कोहनी होती है, ठीक है, इंसान की कोहनी होती है, उस कोहनी के ऊपर कहते हैं भाई ये देखें यहाँ पे बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है, ठीक है, तो उसके ऊपर अल्लाह ने तौफीक दी कि उसको समझाया कि देखें अल्लाह ताला ने इस जगह की जो स्किन है ना उसको सॉफ्ट बनाया है, अगर इसकी स्किन को सॉफ्ट नहीं बनाते तो फिर हम अपने अपने हाथ को मोड़ नहीं सकते थे, ठीक है, अगर मोड़ते तो क्या होता, बहुत ज्यादा तकलीफ होती और शायद स्किन फट जाती, ठीक है, यानी कोई बहुत ही आउच हो जाता, तकलीफ हो जाती, बच्चों को तो ऐसे ही समझाएंगे ना। तो अल्लाह ताला ने देखें सॉफ्ट स्किन बनाई है और सॉफ्ट स्किन की वजह से जब हम अपने कोहनी को मोड़ते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हर हर चीज का तनासुब बनाया बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट। इसी तरीके से जब घर के अंदर वाटरमेलन आता है, ठीक, और घर के अंदर अंगूर भी होता है, तो अब आप इस तरह से समझा सकते हैं कि जी अंगूर किधर होता है, किधर उगता है, अंगूर को अल्लाह ताला ने दरख्त के ऊपर बेल बेल जो ऊपर चढ़ाई होती है तो उसके ऊपर, या एप्पल एप्पल को रखने चले, अंगूर को ना इस्तेमाल करें, एप्पल तो एप्पल कहाँ होता है, ट्री के ऊपर होता है, ठीक है, अगर ये वाटरमेलन जो है ये भी ट्री के ऊपर उगता तो फिर क्या होता, ठीक है, अगर हम नीचे बैठे होते ऊपर से वाटरमेलन टूट के नीचे गिरता तो फिर तो हम तो हमारा तो इन्ना लीला हो जाता, ठीक है, और अगर ना भी होता, अगर कोई नीचे ना भी बैठा होता तो क्या होता, अगर इतना भारी वाटरमेलन ऊपर से नीचे गिरता तो फट करके खराब हो जाता, टूट जाता, फट जाता, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वाटरमेलन को जमीन के ऊपर उसकी बेल लगाई और जो एप्पल होता है उसको दरख्त के ऊपर, ऑरेंज को दरख्त के ऊपर रखा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अल्लाह ताला की मुनासबत है, ये सब कुछ फसव्वा के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि जी बहुत सारे लोग हमें ऐसे नजर आते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं कि जो के यानी जिसके अंदर इम्प्रोपोर्शनेट मामला है या इल प्रोपोर्शनेट मामला है कि बहुत सारे माजूर लोग होते हैं, पैदा ही माजूर होते हैं, एक्सीडेंट के जरिए से माजूर होना तो चलो ठीक है आप एक्सप्लेन कर देंगे भाई तो एक्सीडेंट हो गया इस वजह से माजूर हो गया, लेकिन कितने बच्चे होते हैं जो कि माजूर पैदा होते हैं, उनका कोई चीज खराब होता है, एक हाथ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर अल्लाह ताला ने फसौवा जब फरमाया तो फिर इनके ऊपर फसौवा क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर समझाते हैं कि अल्लाह ताला ने ना किसी बात की वैल्यू को अप्रिशिएट करने के लिए उसका काउंटर वाला केस भी रखा होता है। जब काउंटर को हम देखते हैं ना या उसके जो ऑपोजिट सिनारियो होता है उसको देखते हैं तो फिर हमें जो रूल होता है उसको अप्रिशिएट करने की तौफीक मिलती है तब हमें, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर 24 घंटे तक दिन ही होता, ठीक है, तो फिर दिन को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते थे कि भाई दिन की क्या क्या अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि दिन होता है, ठीक है, दिन के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसका जोड़ा बनाया जिसको कि रात कहते हैं, जब रात होती है तब पता लगता है कि भाई अब दिन नहीं है, اب جب دن نہیں ہے نا تو ہم وہ سارے کام نہیں کر سکتے جو کہ دن میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رات میں جو کام کر سکتے ہیں, اگر سارے 24 گھنٹے رات ہی ہوتی ہماری زندگی میں, ہمیشہ رات ہوتی, تو پھر ہم دن کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تھے, یا ہم رات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دن بنایا کہ بھی پتہ لگ جائے کہ تم دن میں وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ تم رات میں کر سکتے ہو. تاکہ آج کل کے تو میڈیکل سائنس نے یہاں تک بتا دیا کہ اگر رات میں نہیں سونا تو دن کے اندر آپ کتنا ہی سو لیں, آپ اپنے نیند کو پورا نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ یہاں تک اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ رات میں سونے سے جو چیزیں ملتی ہیں, اگر آپ دن میں اس سونے کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی باڈی کے اندر ریلیز ہوتے ہیں. صبح کے وقت سرٹن ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, دن کے وقت کچھ اور ریلیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس وقت کو سونے میں گزاریں تو وہ ہارمونز کے ریلیز ہونے سے جو آپ کو فائدے ملنے تھے وہ فائدے آپ نہیں اٹھا سکتے, ٹھیک ہے. تو رات کی کہتے ہیں تین, رات کے اندر جو 3 گھنٹے کی آپ کی سلیپ ہوتی ہے نا, دن کے اندر آپ یعنی رات کے اندر 1 گھنٹے کی سلیپ, دن کے اندر آپ 3 گھنٹے بھی سو جائیں تو 1 گھنٹے کی سلیپ کے برابر نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کیا ہے, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی یعنی تصویر ہے اس کے اندر کہ کیسا ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہر چیز کو. پھر اس کے بعد تیسری چیز اسی سلسلے میں فرمائی, قدرا. قدرا تقدیر کے معنی کسی چیز کو خاص انداز پر بنانے اور باہمی موازنت کے بھی آئے ہیں, اور بمانی قضا اور قدر کے بھی استعمال ہوا ہے, جس کے معنی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور خاص تجویز کے ہیں. اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے اور بنا کر چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ہر چیز کو کس خاص کام کے لیے پیدا کیا اور اس کے مناسب اس کو وسائل دیے اور اسی کام میں اس کو لگا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کام پورا کیا, ٹھیک ہے. تو وسائل بھی عطا کیے اور اسی کام کے اندر اس کو لگا بھی دیا. تو غور کیا جائے تو یہ بات کسی خاص جنس یا نوع مخلوق کے لیے مخصوص نہیں ہے, ساری ہی کائنات اور مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص کاموں کے لیے بنایا ہے اور ان کو اسی کام میں لگا دیا ہے. ہر چیز اپنے رب کی مقرر کردہ ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے. آسمان اور اس کے ستارے, برق و بارہ سے لے کر انسان و حیوان اور نباتات و جمادات, سب میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جس کو جس کام پر خالق نے لگا دیا ہے وہ اس پر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں فارسی کا ایک شعر لکھا اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر لکھا, خصوصاً انسان اور حیوان کے ہر نوع صنف کو حق تعالیٰ نے جن خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ قدرتی طور پر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, ان کی رغبت و شوق سب اسی کام کے گرد گھومتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کے اندر لائکنیسز پیدا کریں گے, ٹھیک ہے. کسی کو جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کے کام کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو رغبت چونکہ اس طرف ہے تو اب وہ اسی طرف جو ہے نا وہ محنت بھی کرتا ہے اور اسی چیز کو اور زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے پھر کیا ہوتا ہے کہ لکھنے پڑھنے کے کام کے اندر ایکسلنس مزید سے مزید سے مزید مزید تر آتی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. لینگویجز ڈیولپ ہوتی ہیں, بکس ڈیولپ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہی بات جو آرٹ ہے, اس آرٹ کو سیکھنے اور سکھانے کا بھی پورا ایک اسکول ڈیولپ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاؤ ٹو رائٹ ویل جو ہے پوری ایک سائنس بن گئی, ہاؤ ٹو اسپیک ویل ایک سائنس بن گئی, ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ علاج کے اندر اس کی طرف رغبت, آصف صاحب میوٹ کر دیجیے گا پلیز, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں دنیا کے اندر. اسی طریقے سے کسی کے دل کے اندر جو ہے وہ لکڑی سے چیزیں بنانے کی طرف رغبت, اب وہ رغبت جو ہے وہ کئی ہزار سال پہلے سے انسانوں کے اندر ہے, تو وہ اسی سائنس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آج کے دور کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی کہ لکڑی سے جو ہے وہ کیسی کیسی چیزیں دنیا کے اندر بنی, ٹھیک ہے نا. کسی کے دل کے اندر رغبت ہو گئی کہ جی سلیکون کے اوپر کام کریں یا آئرن کے اوپر کام کریں, تو اتنا انہوں نے کام کیا کہ ٹنوں کے حساب سے وزنی جہاز بنا لیے, ٹھیک ہے, جو کہ ہوائی جہاز ہوا کے اندر اڑتے ہیں, حالانکہ وہ اسی دھات اور اسی چیز سے مل کر کے بنائے جس کا کہ وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے, لیکن کتنا ایکسل کیا ان چیزوں کے اوپر کہ اس کو اڑا دیا, ہوا کے اندر اڑا دیا جی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا, تو अल्टीमेटली ये सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला ही की सनाई की तरफ और अल्लाह ताला ही के कुदरत की तरफ लौटता है कि अल्लाह ताला ने यही ये यानी जो कद्दरा फरमाया तो इसके अंदर ये सब कुछ शामिल हो जाता है। चौथी चीज ये फरमाई फहदा, यानी खालिक कायनात ने जिस चीज को जिस काम के लिए पैदा फरमाया उसको उसकी हिदायत भी फरमा दी कि वो किस किस तरह इस काम को अंजाम दे। ठीक है, तो काम को अंजाम देने की हिदायत, ठीक है, यानी एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे करना है, स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, ये सब भी अल्लाह की तरफ से होता है। ठीक है ना, ये जो जिसको हम इन्वेंशंस कहते हैं ना, ये इन्वेंशंस जो होती हैं वो अल्लाह ताला की ही तरफ मंसूब होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ बतौर वसीले के और सबब के इस्तेमाल किया होता है। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ही इंट्यूशन दे रहे होते हैं, जो इन्वेंटर्स होते हैं उनके दिल के अंदर, उर्दू में कहते हैं ना दिल के अंदर ख्याल पैदा करना, तो अल्लाह ही उनके दिल में ख्याल पैदा कर रहे होते हैं कि फलानी मेटल को जो है वो इस तरीके से मोल्ड करना है, फलानी मेटल को जो है वो इस टेम्परेचर के ऊपर लेकर के जाना है, फलानी को जो है वो इस वक्त जो है वो इस दूसरे मेटल के साथ जो है वो आपको मिला देना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही इन्वेंटर्स के दिलों के अंदर आ रही होती हैं और वो इन्वेंटर्स आगे से इन्वेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कैसे कोई काम करना है, एक चीज जो है अल्लाह ताला की तरफ से आ रही होती है। हकीकत तो ये है कि ये हिदायत तमाम कायनात और मखलूकात को शामिल है, आसमान और आसमानी मखलूकात हो या जमीन और उसकी मखलूकात, क्योंकि एक खास किस्म की अक्ल व शऊर अल्लाह ताला ने उनको भी दिया है। ठीक है, यानी आसमान और आसमानी मखलूकात से कौन मुराद है यहाँ पर? आसमान और आसमानी मखलूकात से मुराद जो है वो इंसान और जिन। ठीक है, इसलिए कि जिन ये और इंसान जो है ना ये जमीनी मखलूक नहीं है, ये कहाँ से आई है? ये आसमान से आई है। ठीक है, यानी ये ऊपर की जगह से आई है दोनों के दोनों। ठीक है, इनकी ओरिजिन जो है वो इंसान की ओरिजिन भी अर्श के ऊपर हुई, राइट, और फिर जन्नत के अंदर उसको जगह दी गई, तो जन्नत से तो किसी वजह की वजह से उसको जमीन में भेजा गया ना, तो ओरिजिनली तो वो जमीन का हिस्सा नहीं है। आप लोगों को शायद वो व्हाट्सएप की पोस्ट भी कहीं ना कहीं से मिली होगी कि जिसके अंदर एक कोई अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है, तो उन साहब ने जो है वो एक बुक नहीं बल्कि एक से ज्यादा ही शायद किताबें लिखी हैं इस टॉपिक के ऊपर, बहुत उसने दलाइल दिए अपने तौर पर। ठीक है ना, दलाइल दिए कि जी इंसान में और इस जमीन की बाकी जितनी भी मखलूक है, जितने भी हैवान है, जितनी भी दूसरी चीजें, उनके दरमियान बहुत मेजर फर्क है। ठीक है ना, बहुत मेजर फर्क है। ठीक है, और वो फर्क जो है वो ये बताता है कि इंसान जो है ना वो इस जमीन की मखलूक एक्चुअली है नहीं। ठीक है ना, अगर वो इस जमीन की मखलूक होती ना तो वो भी उसी तरीके से काम कर रही होती जैसे कि ये जानवर काम करते हैं। ठीक है, हैवानात जिनको हम कहते हैं, लेकिन हैवानात बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी गुजारते हैं उनकी, यानी हत्ता के इस हद तक उसने बात करी है कि जरा सी ठंडक ज्यादा हो जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है, जरा सी गर्मी ज्यादा हो जाए इंसान से काम नहीं होता। हालांकि जो ठंडे इलाके के जानवर होते हैं उनके ऊपर जितनी ठंडक आ जाए वो काम करते रहते हैं, जितनी जो गर्म इलाके के जानवर हैं जो कि बिलोंग करते हैं उस जमीन को जहां पे गर्मी होती है, तो कितनी ही गर्मी क्यों ना हो जाए वो फंक्शन करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इंसान नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है कि इंसान वॉज नॉट मेड फॉर दिस, और इंसान डज नॉट बिलोंग हियर एक्चुअली, ना वो ठंडी जगह को बिलोंग करता है ना वो गर्म जगह को बिलोंग करता है। उसी तरीके से इंसान जो है वो अपने रहने के लिए कितने सारी जो है वो अपनी सहूलत और आसाइश के लिए क्या क्या जतन करता है, नरम नरम गद्दे बनाता है और उसके लिए जो है वो एयर कंडीशन बनाता है और हीटर बनाता है और बैठने के लिए ऐसी कुर्सी बनाता है और मेज बनाता है और सोफे बनाता है और गद्दे बनाता है, राइट, कारपेट बनाता है घर के अंदर अपनी आसाइश के लिए। वो चीजें जो कि इस दुनिया के अंदर ओरिजिनली मौजूद नहीं है वो उन चीजों को मिला करके मैन्युफैक्चर करता है ये सारी चीजें। ठीक है ना, हर वक्त इसी मेहनत में लगा रहता है। क्यों? इसलिए कि वो यहाँ की सख्तियों का आदि नहीं है बल्कि वो आसाइशों का आदि है, और वो आसाइशें जो है वो इसको किसी और जगह पर मिला करती थी। ठीक है, तो इसी वजह से इसके अंदर जो है ना उन्होंने लिखा कि उसके अंदर एक मादा है कि जो कि उसी असल की तरफ लौटने की कोशिश करता है, उसी आसाइश वाली जिंदगी की तरफ जो कि यहाँ पर उसको मुयस्सर नहीं है। जबकि आप जानवरों को देखें वो इस किस्म की कोई काम नहीं करते। कभी आपने देखा कि जी किसी जानवर ने जो है वो अपने आसानी की खातिर जो है वो यानी मैन्युफैक्चर किया किसी चीज को, गद्दे बनाए? ज्यादा से ज्यादा जानवर अगर करते भी हैं तो वो घोंसला बना लेते हैं। ठीक है ना, अस्तबल के अंदर बैठने के लिए कोई जगह बना लेते हैं, उससे ज्यादा वो आसाइश की कोई इनके अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन इंसान को तो ऐसा मामला नहीं है ना। तो इस तरीके से उस बंदे ने प्रूव किया कि ये इंसान जो है ना वो इस दुनिया की मखलूक है ही नहीं। और अगर ईमान वाला होता तो वो बात को समझ जाता कि भाई ईमान वाला कुरान तो यही कह रहा है ना कि ये दरअसल इस दुनिया की मखलूक तो नहीं है, ये तो कहीं और से आए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें अल्लाह ताला ने हमारी घट्टी के अंदर, खुट्टी के अंदर डाली हुई हैं, कि जिसको कि फिर यानी फहदा के लफ्ज के अंदर अल्लाह ताला ने समो दिया। ठीक है, बाकी तफसील इस टॉपिक के अंदर भी है और आगे भी बहुत सारे तफसीली टॉपिक्स हैं, तो वो तो हमें अगली क्लास में ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, वरना हम क्लास अभी खत्म करेंगे। जूम की मोबाइल एप्लीकेशन इधर अच्छी नहीं है, इसमें तो नहीं आ रहा। जी किसी को सवाल है? अगर है तो अनम्यूट करके सवाल कर लें, बिकॉज मेरे सामने चैट विंडो गायब हो गई है, वो नजर नहीं आ रही बिल्कुल फोन के ऊपर, इसका क्या मसला है। ठीक है, अगर नहीं है सवाल तो फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।